परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस उत्तम समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम दूर दराज में बैठकर आपके वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकें। हाँ प्रभु, आप हम सबके साथ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। हम पिछले अध्ययन में यशाया की पुस्तक के अंतिम भाग में प्रवेश कर चुके हैं, जो सर्वथा एक भिन्न संदेश है, शांति का संदेश। शांति दो, शांति, शांति की बातें कहो। तो आज हम फिर से आगे बढ़ते हुए यशाया के पुस्तक 40 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। मत्ती, मरकुस, लूका और यहोना चारों अपने अपने सुसमाचार में इसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से संदर्भित करते हैं, क्योंकि चारों सुसमाचारों में यही कहा गया है। अतः मैं इसे स्वीकार करता हूं कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में है। हम आगे पढ़ते हैं यशाया 40 उसके 4 से 6 पद में, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर, मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं, सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। प्रिय मित्रों, लूका के अनुसार यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में है। तब हम आगे देखते हैं यशाया 40 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मनुष्य की तुलना घास से की गई है। प्रश्न यह है कि यदि हमें स्मरण दिलाया जाए कि हम घास के समान हैं, तो उसमें शांति की क्या बात है। वर्षा के बाद घास अति आकर्षक एवं मन भावन लगती है, परंतु धूप निकलने के कुछ समय बाद वह सूख जाती है। मेरे प्रियो, मनुष्य ऐसा ही है। आप कहेंगे इसमें तो शांतिदायक बात कोई है ही नहीं। इसमें शांतिदायक बात क्या है? मनुष्य दुर्बल, भंगुर और अशक्त है, परंतु परमेश्वर का वचन जो दृढ़ है, सुरक्षित और निश्चित है। परमेश्वर का वचन हमारा शरण स्थान है, हमारा विश्राम का आधार है। जी हाँ, हमारी तलवार और झीलम है, ऊंचा गढ़, रक्षा का स्थान तथा सुरक्षा का ऊंचा गढ़ है और हमारा उद्धार है। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 23 से 25 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। सुसमाचार ही तो है जो मनुष्य को अनंत जीवन देता है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से तो पृथ्वी पर एक अस्थिर प्राणी है। अब इस अद्भुत संदेश पर ध्यान दीजिए। यशाया की पुस्तक 40 अध्याय के 9 पद में लिखा है, हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। शुभ समाचार सुसमाचार है। यहूना का शुभ संदेश था, देखो तुम्हारा परमेश्वर। जब तक आप प्रभु यीशु को देह में प्रकट परमेश्वर ना माने, तब तक आपने उसे यथार्थ में देखा नहीं है। आपको उसके अपने रूप में उसके पास आना है, मनुष्य रूप में ही नहीं, परंतु परमेश्वर इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ मानकर। यदि वह केवल मनुष्य है तो वह मेरा उद्धारकर्ता नहीं हो सकता, परंतु वह तो इम्मानुएल है, मेरा उद्धार करता है। यह कैसी महान बात है। यशाया 40 के 10 पद में लिखा है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। मेरे मित्रों, अब यशाया अपने स्वभावानुसार प्रभु यीशु के पहले और दूसरे आगमन को एक साथ जोड़ता है। सच तो यह है कि सुसमाचार भी प्रभु यीशु के पहले और दूसरे आगमन को एक साथ जोड़ता है। अति संभव है कि हम मार्ग से टलकर प्रभु यीशु के प्रथम आगमन या द्वितीय आगमन पर ही ध्यान दें, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रभु यीशु को दोनों आगमनों पर एक साथ ध्यान दें, क्योंकि यही सुसमाचार की परिपूर्णता है। यशाया 40 अध्याय के 11 पद में लिखा है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। पहली बार तो प्रभु यीशु ने यहां आकर एक चरवाहे की भूमिका अपनाई थी, जैसा वह योहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 11 पद में कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। योहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 15 पद में उसने यह भी कहा, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरे प्रियो, सृष्टि परमेश्वर का प्रकाशन है। अगला पद उस अंश का आरंभ करता है जो सृजनहार के रूप में परमेश्वर की महानता व्यक्त करता है। आइए हम पढ़ें यशाया 40 अध्याय उसका 12 पद, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है, ऐसा काम कौन कर सकता है। पहली बात तो यह है कि अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु का भार नहीं होता है। आज वजन नापने का यह काम कौन कर रहा है और उसका वजन कहां नापा जाएगा। इस पद से मेरे मन में एक गीत उभरता है, कैसा महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यशाया 40 उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है, उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है। परमेश्वर अपने तुल्य किसी और को नहीं पाता है, वह किसके पास सलाह लेने के लिए जाएगा। किसी ने बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछा, ऐसी क्या वस्तु है जिसे आपने देखा हो परंतु परमेश्वर ने नहीं देखा है। इसका उत्तर बहुत आसान है, उसने ऐसा कुछ नहीं देखा जो उसके बराबर हो। मेरे मित्रों, मैं तो अपने बराबर वालों को प्रतिदिन देखता हूं और आप भी देखते हैं, परंतु परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। यशाया की पुस्तक 40 अध्याय उसके 18 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? आप और मैं तो बहुत कम जानते हैं, हम बस उतना ही जानते हैं जितना परमेश्वर के वचन में प्रकट है, और मेरे विचार में परमेश्वर ने हमें सब कुछ नहीं बताया है। पहली बात तो यह है कि हम तो वही समझ नहीं पाते जो उसने हमें बताया है। यशाया परमेश्वर को मूर्तियों से श्रेष्ठ बता रहा है। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? क्योंकि किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, उसके चित्रों को देखो। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं प्रभु यीशु के चित्रों को कुछ नहीं समझता, क्योंकि वे उसके चित्र है ही नहीं। लोग आज अपने घरों में रखते हैं, लेकिन यह उसका चित्र नहीं है। यह कहकर मैं जनप्रिय नहीं बनूंगा, चित्र बेचने वाले और चित्रों के साथ भावनाओं को जोड़ने वाले सोचते हैं कि मैं बहुत बुरा हूं, परंतु सच तो यह है मेरे मित्रों कि हमें प्रभु यीशु के चित्रों की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी प्राचीन विचारक की बात से सहमत हूं, मनुष्य ने प्रभु यीशु का चित्र बनाने का विचार तब तक मन में नहीं आने दिया जब तक उन्होंने अपने मन से उसकी उपस्थिति खो ना दी। यहां यह पहला और अति उपहासजनक प्रहार है जो यशाया मूर्तियों पर करता है। यशाया के पुस्तक 40 अध्याय के 19 पद में लिखा है, मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की साकले ढालकर बनाता है। जी हां, धनवान कीमती मूर्ति बनाते हैं क्योंकि उनका ईश्वर धनवान है। तब हम आगे पढ़ते हैं यशाया 40 के 20 पद में, जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने, तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल न सके। गरीब मनुष्य की मूर्ति अपरिष्कृत लकड़ी की काटी हुई मूर्ति है। यह मूर्ति एक कारीगर के द्वारा बनी है और वह उसकी ही आराधना कर रहा है। यशाया की पुस्तक 40 अध्याय उसके 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया, क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? परमेश्वर की तुलना एक मूक मूर्ति से करना नीरी मूर्खता है, यह यशाया अपने लोगों से कहता है। यशाया की पुस्तक 40 अध्याय के 22 पद में वह आगे कहता है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। मेरे मित्रों, पुराना नियम नहीं सिखाता कि पृथ्वी समतल है, परंतु कोलंबस के युग के वैज्ञानिक यही मानते थे। उन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा था, अतः चूक गए। मेरे विचार में तो वैज्ञानिक आज भी चूक रहे हैं। यह पद स्पष्ट सिखाता है कि पृथ्वी गोल है, यह घेरा आकाश मंडल में स्थित है और परमेश्वर का सिंहासन मनुष्य के सबसे बड़े दूरबीन की सीमा से भी परे है, अंतरिक्ष की असीमित दूरी पर है। आइए हम देखें चिंतन, परमेश्वर की बुलाहट। इन सब तथ्यों के प्रकाश में परमेश्वर हमें चिंतन करने के लिए बुलाता है। यशाया की पुस्तक 40 अध्याय के 27 पद में लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इसराइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। परमेश्वर अपने लोगों की कठिनाइयों और परेशानियों को जानता है। यदि आप उसके हैं तो वह जीवन की आंधियों को थाम सकता है, परंतु कभी कभी उसके अपनों के लिए सीखने हेतु आंधियों में शिक्षाएं होती हैं। अतः जब आप अपने आप को आंधियों में फंसा हुआ पाएं, तो रोने धोने और परमेश्वर की आलोचना करने की अपेक्षा क्यों ना मनन करके देखें कि परमेश्वर उसमें से आपको क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको कष्टों में नहीं पड़ने देगा जब तक कि वह आपको कुछ सिखाना ना चाहे। सीखना यह होगा, यशाया 40 अध्याय के 28 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। जी हाँ, हमारा परमेश्वर महान है, वह कभी नहीं थकता है, वह मनुष्यों के समान नहीं है। यशाया 40 अध्याय उसके 30 और 31 पद में हम पढ़ते हैं, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। मेरे मित्रों, यहां तीन प्रकार के बल हैं और अनेक टीकाकारों ने उन्हें पहला योहन्ना के पत्रे 2 अध्याय उसके 12 से 14 पद से तुलना करके मसीही जीवन के विकास के तीन चरण बताया है। विकास के ये तीन चरण हैं, पहला युवा विश्वासी उकाब की नाई उड़ेगा, दूसरा युवा विश्वासी दौड़ेगा, तीसरा परिपक्व विश्वासी दृढ़ता से चलेगा। मेरे मित्रों, इससे मुझे एक प्रचारक का उपदेश स्मरण होता है। उस भाई ने कहा, मेरे भाइयों इस कलीसिया को चलना है। यह सुन एक कलीसियाई सेवक ने कहा, आमीन। उसने आगे कहा, मेरे भाइयों इस कलीसिया को दौड़ना है। उस सेवक ने कहा, हल्लेलुया। तब उसने कहा, इस कलीसिया को उड़ना है। उस सेवक ने कहा, आमीन हल्लेलुया। तब उस प्रचारक ने कहा, इस कलीसिया को उड़ने के लिए पैसों की आवश्यकता है। उस सेवक ने कहा, इसे अभी चलने दो, मेरे भाइयों इसे अभी चलने दो। मेरे मित्रों, आप जो भी हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर चलेंगे तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा, चाहे आपकी दशा कैसी भी क्यों ना हो। यदि आपको चलने की आवश्यकता है तो वह आपको बल प्रदान करेगा। यदि आपको उड़ने के लिए शक्ति चाहिए तो वह आपको वह भी देगा। उसके पास आपके लिए वह शक्ति भी है। यह एक अति उत्तम अध्याय है जिसमें परमेश्वर हमारे सृजनहार, हमारे उद्धारकर्ता और हमारे निर्वाहक की शांति को व्यक्त करता है। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 40 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 41 से, जिसका विषय है परमेश्वर मनुष्य को व्यवस्था देता है। परमेश्वर इसराइल को उस पर विश्वास करने के लिए राज करता है। परमेश्वर मूर्तियों पर राज्य करता है। इस अध्याय में अध्याय 40 का ही विचार चल रहा है कि परमेश्वर महान है। यहां मुख्य विचार यह नहीं कि परमेश्वर केवल सृजनहार है, वरन यह भी कि वह मनुष्य के साथ व्यवहार करता है। परमेश्वर की महानता सृष्टि एवं मानव जाति के इतिहास में प्रकट है। इस अध्याय में कुछ विचार समझने में कठिन है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी पृष्ठभूमि में भविष्यवाणी का रेखा चित्र है, परंतु मुख्य विषय है कि परमेश्वर अपनी संतान को इस संसार में लेकर चलेगा और उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि उसमें खड्डे और खतरे हैं। अतः यहां परमेश्वर की संतान के लिए शांति है। तो आइए हम देखें, परमेश्वर मनुष्य पर राज करता है। यशाया की पुस्तक 41 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे दीपों मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें, वे समीप आकर बोलें, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आएं। मनुष्य न्याय की ओर बढ़ रहा है। ज्योति और अंधकार में अंतिम प्रदर्शन का समय आ रहा है, अर्थात परमेश्वर और पैसा, विश्वास और अविश्वास का प्रदर्शन। अब परमेश्वर मनुष्य को बुला रहा है कि उसके निकट आ जाए और जो उद्धार उसके पास उनके लिए है उसे स्वीकार करें। परमेश्वर मेल करने वाला परमेश्वर है, वह आपसे कुछ नहीं मांगता है, वह तो केवल यह चाहता है और कहता है कि आपके लिए उसके पास जो अनुग्रह और उद्धार है आप उसे ग्रहण करें। वह आपको जबरदस्त नहीं करेगा, लेकिन आपको वह अवसर देगा। यशाया की पुस्तक 41 अध्याय के 2 पद में लिखा है, किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है, वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसके राजाओं पर अधिकारी ठहराता है, वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। ध्यान दीजिए, किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा, यह एक जटिल अभिव्यक्ति है। कुछ लोगों के विचार में यह कुसरु के विषय में है। हम कुसरु का नाम आगे चल करके देखेंगे, परंतु यह वह स्थान नहीं है। मेरे विचार में यह शब्द धार्मिकता से संबंधित है, न कि किसी मनुष्य से। यह संभवतः इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के राज्य के बारे में है जब वह फिर आएगा। हम इसी विचार को इस भाग में विकसित होते हुए देखेंगे। यशाया की पुस्तक 41 अध्याय के 6 पद में लिखा है, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हिया बांध। क्योंकि परमेश्वर बुराई को सुधारने और अन्याय को दूर करने के लिए आ रहा है, इसलिए वे मनुष्य जो परमेश्वर के साथ उचित संबंध में हैं ढाड़स बांधे। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले अकिंचन मानव के लिए आशा है, उसे भविष्य की चिंता नहीं करना है। परमेश्वर इसराइल पर राज्य करता है कि उसमें विश्वास करे। यहां भी मूर्ति पूजा का उल्लेख है। आइए हम पढ़ें यशाया 41 उसके 7 पद में, बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हिया बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है, अतः वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। घोर आवश्यकता में मनुष्य ने एक मूर्ति बना ली, परंतु वह तो अस्थाई है। परमेश्वर कहता है कि वह अस्थाई है। मेरे प्रियो, यशाया 41 उसके 8 पद में आगे लिखा है, हे मेरे दास इसराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। अब परमेश्वर इसराइल को निराशाओं में शांति प्रदान करता है। परमेश्वर कहता है कि मूर्तियां बनाने की अपेक्षा तुम मेरे पास क्यों नहीं आते। वह जानता है कि वे पापी हैं। वह उन्हें याकूब कहता है। याकूब चतुर था। परमेश्वर ही ने उसे इसराइल कहा था, अर्थात परमेश्वर का राजकुमार। अब परमेश्वर याकूब के वंशजों के साथ भी ऐसा ही करना चाहता है। मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाता था। परमेश्वर इसराइल को भी ऐसे ही संबंधों में लाना चाहता था। हम यशाया के पुस्तक 41 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे मित्रों, यह पद वास्तव में शक्ति का स्तंभ और हर एक युग में परमेश्वर की संतान के लिए शांति का स्रोत है। आगे वह कहता है कि यदि वे परमेश्वर से विद्रोह करेंगे तो वह उनकी भूल की चरम सीमा होगी, क्योंकि वे उस दिन की ओर बढ़ रहे हैं जब इन सब बातों का लेखा लेना आवश्यक होगा। अब इस अद्भुत पद पर आप ध्यान दीजिए, यशाया 41 के 13 पद में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, यह परमेश्वर पर भरोसा रखने का प्रस्ताव है। कैसी शांतिदायक बात है। परमेश्वर हमें अपने विश्वास में लेना चाहता है। वह हमें उसकी संगति में रहने योग्य बनाना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसे जाने और उसकी सहभागिता में बने रहें। ओह, मनुष्य आज कैसी चूक और भूल कर रहा है। कुछ लोग कलीसिया की गतिविधियों में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि वे इसे भूल जाते हैं कि उन्हें परमेश्वर के साथ संगति में, सहभागिता में बने रहना है। यशाया 41 उसके 14 पद में लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इसराइल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। मेरे मित्रों, आपको अपने कुछ होने पर घमंड होगा, परंतु आप एक कीड़े से अधिक कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ही है जो हमें महत्व प्रदान करता है। परमेश्वर ही मनुष्य को कुछ बना सकता है। मनुष्य जीवन में प्रयास करता है, परंतु उसके प्रयास उसे कहां ले जा रहे हैं? उसे अपने प्रयासों से क्या प्राप्त हो रहा है? कुछ लोग व्यर्थता के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, वे और कहां जा सकते हैं? मनुष्य के पास एकमात्र सहारा है परमेश्वर। ओह, मनुष्य वंचित हो रहा है परमेश्वर की संगति से, उसके उद्धार से, उसकी भलाई से और उसके अनुग्रह से। यह सब आपका है। यदि आप उसके पास आ जाएं, तो ये सब कुछ आपका है। अब वह प्रभु राज के सांसारिक सुख की चर्चा करता है कि ऐसा ही होगा। परमेश्वर आपसे और मुझसे आज की आत्मिक आशीषों के बारे में और अनंत जीवन की आत्मिक आशीषों के बारे में चर्चा करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप नहीं चाहते कि आप उद्धार प्राप्त करें, आप भलाई और अनुग्रह को प्राप्त करें? यदि आप चाहते हैं, तो आप क्यों परमेश्वर के पास नहीं आते? आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आएं, इससे कि आप व्यर्थ में परिश्रम करें और अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। मेरे प्रियों, आज हमारे अध्ययन का समय यहां पर समाप्त होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मेरा यीशु मेरा